नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रही जनगणना के पहले चरण के लिए 33 प्रश्न अधिसूचित किए। प्रदेश में आगामी 19 अप्रैल से शुरू हो रही चार धाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुटा। यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया जा रहा है। नगर निगम देहरादून ने स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों को गति देते हुए शहर की सफाई व्यवस्था की निगरानी और अधिक सख्त की। वार्डवार कार्य योजना तैयार और एलपीजी की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए देहरादून जिला प्रशासन का जांच अभियान जारी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रही जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए 33 प्रश्न अधिसूचित किए हैं। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया कि जनगणना दो चरणों में होगी। पहले चरण में घर घर जाकर सूचीकरण और स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होगी। यह चरण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार 30 सितंबर तक चलेगा। स्वगणना पोर्टल 16 भाषाओं में उपलब्ध होगा। प्रदेश में आगामी 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तैयारियों में जुटा है। पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की जा रही है। साथ ही यात्रा मार्ग पर अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र, मोबाइल मेडिकल यूनिट और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग विशेष रूप से उच्च हिमालय क्षेत्रों में स्वास्थ्य जोखिम को ध्यान में रखते हुए तीर्थयात्रियों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य जांच और जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर हेल्थ स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जा रही है ताकि गंभीर बीमारियों से ग्रसित यात्रियों की समय पर पहचान हो सके। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
चारधाम यात्रा के लिए तमाम डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि, क्योंकि जो पहाड़ में चारधाम यात्राओं में स्वास्थ्य सेवा में सबसे बड़ा असर जो पड़ता है वो आप देखते हैं, या तो एक्सीडेंट्स होते हैं या हाई एल्टीट्यूड सिकनेस है। उसका परिणाम है कई लोगों को जो शुगर ब्लड प्रेशर के रोगी होते हैं, शुगर के होते हैं, जब हाई एल्टीट्यूड पे पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं कार्डियक प्रॉब्लम उनको होती है। तो इसीलिए ट्रेनिंग दी जा रही है डॉक्टर्स को ताकि तत्काल इस तरह की हाई एल्टीट्यूड सिकनेस पर उनका तत्काल इलाज कराया जाए।
नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद अब पुनर्वास की प्रक्रिया तेज हो गई है। करीब 30 हेक्टेयर भूमि पर 4,300 से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ देने के लिए शिविर लगाए जाने शुरू हो गए हैं। रेलवे अतिक्रमण क्षेत्र में 6 स्थानों पर शिविर लगाकर प्रभावित परिवारों की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अप्रैल माह में सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी जाएगी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही कार्रवाई की जा रही है।
अभी वो काम गतिमान है और जो राज्य स्तरीय जो विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके तत्वाधान में जो जिला प्रशासन और नगर प्रशासन के लोग हैं वो उसमें पीएमएवाई पात्रता के लिए आवेदन पत्रों का वितरण उसमें काफी अच्छी प्रगति हुई है। तो जैसे जैसे वहाँ पर कलेक्शन होगा फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के क्रम में जो मिला है उसमें उनके पात्रता का।
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणि त्रिपाठी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप यह शिविर लगाए जा रहे हैं और नियमों के अनुसार पात्र लोगों को चिन्हित किया जाएगा।
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अब्दुल मतीन सिद्दीकी के मामले में जो निर्देश दिया था उसी के अनुक्रम में हमने 6 जगह बनभूलपुरा में जो ऑक्युपाइड एरिया है 6 जगह हमने कैंप स्टॉल लगाए हैं और अब तक हमने 7,000 से ऊपर फॉर्म बांट दिए हैं और फॉर्म जमा होने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। और अच्छी बात यह है कि 1,000 से ऊपर फॉर्म अभी तक जमा हो गए हैं और मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों से ये आग्रह भी करूंगा कि चूंकि ये कैंप 31 तक चलना है, 31 मार्च तक, ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश है, तो 31 मार्च तक अपने अपने फॉर्म जमा करने कोशिश करें। प्रशासन की तरफ से हर स्टॉल पे नोटरी बैठाए गए हैं ताकि लोगों को इधर उधर न जाना पड़े।
गौरतलब है कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में 24 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई थी, जिसमें प्रभावित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शिविर लगाने के निर्देश दिए गए थे।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
नगर निगम देहरादून ने स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों को गति देते हुए शहर की सफाई व्यवस्था की निगरानी और अधिक सख्त कर दी है। नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निगम ने सभी वार्डों का वर्गीकरण करते हुए वार्डवार विस्तृत कार्य योजना तैयार की है, जिसके तहत प्रत्येक वार्ड की आवश्यकता और चुनौतियों के अनुसार कार्य किया जाएगा। जिन वार्डों में गैर सरकारी संगठन या कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्यों को संतोषजनक नहीं पाया गया है, उन्हें सख्त चेतावनी देते हुए त्वरित सुधार के निर्देश दिए गए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 को लेकर निगम ने सभी मानकों में गुणात्मक सुधार किया है। सोर्स सेग्रीगेशन को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम द्वारा वार्डवार विशेष अभियान संचालित किए जा रहे हैं। इन अभियानों के माध्यम से गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहीं नगर निगम ने वार्डों में गत एक वर्ष में 70% से 80% तक डोर टू डोर कूड़ा उठाया है, जिसे शीघ्र 100% तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसको लेकर संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है। देहरादून जिला प्रशासन एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाने और उपभोक्ताओं को सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार जांच अभियान चला रहा है। इस कड़ी में उपजिलाधिकारी सदर हरिगिरी के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में जांच की। निरीक्षण के दौरान रिंग रोड क्षेत्र में कई डिलीवरी कर्मी मोटरसाइकिल से सिलेंडर वितरित करते पाए गए, जिनका तेल कंपनियों से कोई वैध अनुबंध नहीं था। इससे गैस की कालाबाजारी की आशंका जताई गई। टीम ने दो गैस एजेंसियों के गोदामों का भी निरीक्षण किया, जहां छोटे वाहनों से गैस आपूर्ति किए जाने की पुष्टि हुई। इस पर संबंधित एजेंसियों को अनुबंधित लोडर वाहनों के माध्यम से ही गैस डिलीवरी करने के निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन ने बताया कि वर्तमान में 36,500 से अधिक घरेलू और करीब 1,671 व्यावसायिक सिलेंडर का स्टॉक उपलब्ध है। प्रशासन का कहना है कि मांग को देखते हुए एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति लगातार बढ़ाई जा रही है, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। राजधानी देहरादून के केदारपुर स्थित नारी निकेतन में एक संवासिनी की आत्महत्या के मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखार्य ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने नारी निकेतन की अधीक्षिका, कर्मचारियों और शव बरामद करने वाली चौकीदार से घटना को लेकर विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, उनकी नियमित निगरानी करने और रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने को कहा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। श्रीमती आर्य ने बताया कि मामले की जांच जारी है और अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से अस्वस्थ संवासिनियों की देखभाल के लिए मनोचिकित्सकों की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में प्रस्तुत करने को कहा गया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
जो विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने जो बताया और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, तो वो दोनों के उसको परीक्षण करते हुए यदि लापरवाही हमारे किसी कर्मचारी की, अधीक्षिका की, डिपार्टमेंट के संबंधी किसी जिम्मेदार व्यक्ति की रहेगी तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध भयंकर कार्रवाई होगी, और यदि नहीं हुई होगी तो निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो उसको लेके जो दिशा निर्देश आज भी दिए हैं उस समय और पुख्ता तरीके से उसको सुनिश्चित कराया जाएगा।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रही जनगणना के पहले चरण के लिए 33 प्रश्न अधिसूचित किए। प्रदेश में आगामी 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुटा। यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया जा रहा है। नगर निगम देहरादून ने स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों को गति देते हुए शहर की सफाई व्यवस्था की निगरानी और अधिक सख्त की। वार्डवार कार्य योजना तैयार और एलपीजी की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए देहरादून जिला प्रशासन का जांच अभियान जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।